परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की श्री श्री ललिता विशाखा राधा पार्थ साथी भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की नितय गौर प्रेमानंदी नितय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गौरांग की जयकार हो। नमो विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णापादान् साहागना ललिता श्री विशाखावितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मिलकर सारे बोलो हाथ खड़े करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका प्रभुपाद का दिया हुआ ये दिव्य कार्यक्रम सुबह भागवत सायंकाल को भगवत गीता, आप सबका इसमें स्वागत है। तो ये भागवत का श्लोक संख्या जो है 3 है और ये अध्याय दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। तो बड़े प्रेम से पीछे उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट। तो तीसरा श्लोक यहां नहीं लिखा है, इसको मैं स्वयं पढ़ूंगा। और चौथा श्लोक लिखा है बोर्ड पर, उसे आप सब पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। एतत् आख्याहि मे ब्राह्मण जामातुः स्वस्वरस्य च विदवेशस्तु यता प्रांशस तताये दुष्टया जान सती। अनुवाद, हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने अपने प्राण छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा श्वशुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे परम देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, श्रील प्रभुपाद ने यहां तात्पर्य नहीं दिया, लेकिन उनकी कृपा से मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे यहां मैत्री जी को प्रश्न किया है विदुर जी ने, मनुष्य के लिए अपने प्राण छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, ये बड़े को विचारने की बात है। क्योंकि इस परीक्षा में हम सब बैठेंगे, कौन सी? अंत समय की परीक्षा। उस परीक्षा से ना मैं बच सकता हूं, ना आप, ना ये, ना वो, ना छोटा, ना बड़ा, अमीर, ना गरीब। और जैसा यहां पूछा गया है, और अंत समय बड़ा दुखदाई और बहुत कठिन है। इसलिए परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष आदि व्याधि इनके दर्शन करो। दर्शन करने के लिए क्यों कह रहे हैं परमपिता, क्योंकि ये सबके लिए आएंगे, इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम कोई इसका ध्यान भी नहीं कर रहा, इससे कोई नहीं बच सकता लेकिन इसका ध्यान भी कोई नहीं कर रहा। लेकिन मैंने ये देखा प्रभुपाद जी उसका ध्यान था। मुझे एक बात ध्यान में आई, प्रभुपाद अस्वस्थ थे तो वो लगे रहते थे बेचारे प्रचार में, उन्हें पता था समय थोड़ा सा, 11 वर्ष मात्र उनसे हमको मिले पूरे संसार को। तो एक बार मैंने कहा प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना भाई योगेंद्र, कभी ये शरीर स्वस्थ रहेगा कभी अस्वस्थ रहेगा, और एक दिन तो शरीर को छोड़ना है। हम नहीं सोचते ऐसा छोड़ना, शुद्ध भक्त सदा भगवान के साथ रहते हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा क्योंकि बड़ा जरूरी विषय है ये प्रभुपाद कृपा से। एक राजा था, ये राजा बड़ा बीमार हो गया और इसके जो वैद्य थे चिकित्सक थे उनके, अभी राजन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे, ये असाध्य रोग आपको लग गया, कि जैसे अभी भी कैंसर है या एड्स है, कई बीमारियां हैं असाध्य, उनका कोई इलाज नहीं है। तो राजा दिन रात चिंता में, मर जाऊंगा अभी, मैं मर जाऊंगा बस। सूख के राजा कांटा हो गया था मृत्यु के चिंतन में। एक दिन राजा के पास एक महात्मा आ गए, महात्मा आ गए तो राजा ने महात्मा जी का बड़ा स्वागत किया और उनकी बड़ी सेवा की, बड़ी अच्छी तरह से उनको रखा। महात्मा जी कहते हैं भाई मैं राजन जाना चाहता हूं। महात्मा जी कहते हैं राजन हम तुम्हारी सेवा पर बहुत प्रसन्न है, कुछ मांग लो हमसे, को मांगना चाहते हो मांग। कहते महाराज मेरे वैद्यों ने बता दिया कि मैं मरने वाला हूं, दिन रात यही चिंता रहती है मर जाऊंगा, अगर इसके लिए कुछ कर सकते हो आप तो कुछ कीजिए। कहते मैं कर सकता हूं। राजा को थोड़ा सा, कहते महाराज क्या मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम्हारी अभी मृत्यु नहीं होगी, होगी पर अभी नहीं होगी, पर उसमें एक शर्त है। क्या महाराज शर्त बताओ। शर्त यह है कि तुम्हें स्त्री चिंतन नहीं करना होगा, स्त्री संग का बिल्कुल त्याग, यही बंधन है। भगवान ने कहा है ना कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात् पापमा विधियेनम हि वैरिणम। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है, जिसकी चपेट में हमारे नेता लोग सबको ला रहे हैं। दिल्ली तो गंदगी है, क्या है यहां पर, शर्म आती है, हमारी बहू बेटियां कैसा व्यवहार कर रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, उन्हें शर्म नहीं पर हमें शर्म आती है, पर हाथ रखना पड़ता है, दुर्गति है, कितने क्राइम यहां हो रहे हैं। यही ये जो बुरे कर्म है ना, ये काम ही क्राइम की जननी है। तो राजा कहते हैं महाराज आप कहते हैं मृत्यु का चिंतन नहीं करना, मैं तो सदा मौत का ही चिंतन करता हूं, अपना मृत्यु का नहीं, स्त्री का चिंतन, स्त्री का चिंतन तो मेरे ध्यान में है ही नहीं बिल्कुल। अच्छी बात है, और तुम मुझे वचन दो स्त्री चिंतन तुम कभी नहीं करोगे, स्त्री संग कभी नहीं करोगे। कहते महाराज मर रहा हूं, बचा दोगे तो मैं आपको वचन देता हूं। महात्मा जी वन में गए, कुछ जड़ी बूटियां ले आए, उनको उन्होंने पीसा, पीस करके जूस निकाला, जूस निकाला, एक गिलास भरा, एक आधा गिलास भरा, आधा गिलास दे दिया राजा को और एक गिलास खुद पी गए महात्मा जी। ऐसे जूस जो है रोज महात्मा जी उनको पिलाने लगे जड़ी बूटियों का। हुआ क्या कि राजा स्वस्थ होने लग पड़ा, राजा की सेहत में परिवर्तन आने लग पड़ा। तो एक दिन राजा कहता है, देखो हम जो संसार में खोए हुए व्यक्ति हैं ना, हमारी यही गति है जो राजा की है। अभी हुआ क्या कि राजा धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सेहत उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो आदमी जो देखो ना कि भगवान ने कहा है और प्रभुपाद जी ने भी समझाया है, काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, ये नहीं छूटता, मोह छोड़ना बड़ा कठिन है, ये देन है इस दुष्ट काम की। सारा संसार ये काम से चल रहा है, काम लस्ट। आदमी प्रभुपाद कहते हैं गधे की तरह काम करता है, किस लिए? अपनी इंद्रियों के दर्पण के लिए, टू फुलफिल हिज लस्टी डिजायर्स। अभी राजा जब स्वस्थ हो गया तो राजाओं का क्या काम है? बस यही विषय वासनाओं को भोगना। राजा कहता महाराज मेरी इच्छा भी स्त्री संग करने की हो रही है। महात्मा का राजन अभी तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तूने क्या वचन दिया था? मैं कहते महाराज मैं भूल गया, स्वस्थ होने पर मेरा ध्यान ऐसा हो गया कि राजन तू अभी मर जाएगा, अभी तू नहीं बच सकता। राजा फिर से घबरा गया और बोला भाई मेरी से गलती हो गई। देखो जब तक आदमी भक्त नहीं बनेगा ना, तब तक वो इस पाप और इस बुराई को नहीं छोड़ सकता। राजा भक्त नहीं बनाता ना, महात्मा जी ने उसका इलाज कर दिया। राजा घबरा गया। अभी राजा कहता महाराज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसी संदर्भ में है ये बात जो पढ़ा श्लोक। क्या? बोलो राजन। कहते महाराज आप आधा ग्लास मेरे को पिलाते हैं और एक ग्लास पूरा खुद पीते हैं, आप में तो कोई मन में कोई वो क्या कहते हैं चंचलता है ही नहीं, आपका मन तो बिल्कुल स्थिर है, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो महात्मा कहते हैं देखो राजन मैं हर समय मौत का चिंतन करता हूं, मृत्यु आ रही है वो आएगी, कभी भी आएगी, इसलिए मेरा ध्यान इस दुष्ट पापी काम की ओर नहीं जाता। जब ये कहा तो राजा का ध्यान ठिकाने आ गया। कहते महाराज मेरे बंधन काटो। अच्छा राजन बोलो। कहते मैं सब छोड़ना चाहता हूं। रात के 12 बजे राजा को महात्मा जी ने उठाया और वो राजमहल छोड़ के महात्मा के साथ राजा भी वन में चला गया और साधु बन गया और त्यागी बन गया। तो मृत्यु आदमी मर रहा है, प्रभुपाद ने एक बात सुनाई है, लेकिन इस दुष्ट काम को नहीं छोड़ सकता। एक बार ये बात प्रभुपाद ने सुनाई अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल की बात हो रही है। अकबर को बीरबल कहता है कि जहां पना ये काम स्त्री आकर्षण, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण इतना प्रबल है कि अगर वो मर भी रहा है ना, मृत्युशैया पर भी पड़ा है, फिर भी वो उसको नहीं छोड़ सकता। अकबर कहता है कि बीरबल मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अच्छा समय आने पे मनाऊंगा फिर मैं आपको। एक दिन बीरबल कहता है अकबर को कि जहां पना चलिए मेरे साथ। अकबर तैयार हो, कहते अपनी जो शहजादी राजकुमारी, ये जो मुगल हुए हैं ये भी बड़े सुंदर गोरे जैसे अंग्रेज हैं। वैसे अंग्रेजी में कहा ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर कोई बड़ा गोरा है वो भी बेकार है, अगर बड़ा काला है तो वो भी बेकार, मतलब वो भी अच्छे बन सकते हैं पर अच्छा बड़ा काला भी अच्छा नहीं लगता और बड़े गोरे तो बिल्कुल बेकार है बेचारे। हम भारतीय ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले, इसलिए हम अच्छे। तो मुगल बड़े गोरे, जो मुगलों ने राज किया भारत पर 800 साल राज किया, लूट के ले गए, प्लंडरर्स थे, जबरदस्ती हम लोगों को मुसलमान बना गए, बड़े बलिदान हुए। खैर तो राजकुमारी शहजादी जो अकबर की बड़ी सुंदर नवयुवती, अकबर ने उसको भी साथ ले लिया। अभी बीरबल अकबर को कहां ले आया? एक मुसलमान वृद्ध मृत्युशैया पर पड़ा है, सूख के कांटा हो गया है, मरने वाला कभी भी मर सकता है। तो बीरबल कहता है, नाम लिया उसका, ये जो भी हैं मौलवी बशीर अहमद या जो भी हैं बड़े बीमार हैं। अकबर पूछता है, हां मौलवी जी आपका क्या हाल है? तो अकबर हाल पूछ रहा है लेकिन मौलवी जी उस शहजादी को देख रहे हैं। तो छट इशारा किया बीरबल ने कि देखो महाराज कहां देख रहा है। तब अकबर के देख के वाकई देखो मर रहा है, कभी मर जाएगा, एक पांव उसका कब्रिस्तान में है एक यहां पर है, लेकिन देख रहा है मेरी बेटी को। तो ये काम तभी छूटेगा जब भक्ति के अंदर उदय होगा, याद रखो। बिना भक्ति के इसे कोई नहीं बच सकता। और याद रखो, काम से हमें कौन छुड़ाएगा पता आपको? राम, ये राम भी विष्णु तत्व हैं, एक राम और हैं, जानते हो कौन? नहीं पता? बलराम जी। बोलो बलराम भगवान की। तो अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, पहले बलराम जी की कृपा चाहिए हमको। कृष्ण को पाने के लिए बलराम की कृपा चाहिए। अगर आपको राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए एक जगह प्रार्थना की है, प्रार्थना की है, आर कवे निताय चंद्र करुणा हरिवे। बोलो आर कवे, आर कवे निताय चंद्र करुणा हरिवे, आर चंद्र विषैया छाड़िया कवे शुद्ध कवे मना, कवे हमारे रवा श्री वृंदावन। हे मेरे मन, तू विषय विकारों का त्याग कब करेगा और शुद्ध हो जाएगा, तभी तुम वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। अगर कोई वृंदावन में जाकर के वासनाओं की तृप्ति करता है ना, तो घोर नरक में उसको जाना पड़ता है। प्रभुपद कहते हैं वृंदावन में मान लो किसी की अगर मृत्यु होती है, भगवान तो मिलते हैं, पर ऐसे लोग प्रश्न किया भाई जो बेकार काम करते हैं वृंदावन में रहकर, पैसे के पीछे पड़े हैं, स्त्री के पीछे पड़े हैं, वासनों की तृप्ति कर रहे हैं, कहते हैं वो वृंदावन मरते हैं उनको सुगर कुत्ते का शरीर मिलता है और गंदगी खाते हैं वहां वृंदावन में, और सुगर कुत्ते के शरीर में जाते हैं, ब्रिज में ही रहेंगे लेकिन सुगर कुत्ते के शरीर में। तो नित्यानंद भगवान कौन है? बलराम। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो इंद्रियों के तर्पण के लिए भौतिक इच्छा है उससे मुझे मुक्त करेंगे? बलराम, याद रखो नित्यानंद के श्री चरण में यही प्रार्थना करो कि मेरा मन विषय वासनाओं से हटे और श्री कृष्ण के चरणों में लगे। ये गुरु तत्व हैं, परम गुरु हैं, ये भगवान के ही विस्तार हैं, ये भगवान के देने वाले हैं, तो इनके श्री चरणों में ये प्रार्थना करनी है। आज मेरे मन में गंदगी है, इस गंदगी का कारण बस यही वासना है, याद रहो। हर दोष का कारण, हर बुराई का कारण ये दुष्ट काम है, भगवान ने कहा है। भगवान कह रहे हैं कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महत्क्षणो महत्पापमा विधि ये नहीं बैरी नाम। इस संसार का जो सर्वभक्षी पापी शत्रु है वो काम है, भगवान कह रहे हैं। तो महात्मा जी की कृपा से राजा भी त्यागी बन गया और वन में जाके भजन किया। तो मृत्यु से बचने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, पर वो जो मृत्यु का भय है उससे हम बच सकते हैं। मृत्यु के भय से बचने का रास्ता बस नित्यानंद भगवान, बलराम भगवान, उनकी अगर हमें शरण मिलेगी, अगर वो कृपा करके हमारे अंदर से विषय वासनाओं को समाप्त कर देंगे। इसलिए तो महाप्रभु ने क्या कहा, मैं शिक्षाष्टक तो रोज पढ़ता हूं लेकिन असर कुछ नहीं मेरे पर, रोज मैं उसका उच्चारण करता हूं। महाप्रभु ने क्या कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री सुंदरिम कविताम, मुझे बहुत बड़ा कवि भी नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना, तो फिर क्या चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कृष्ण, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, भक्ति आहित की, बिना किसी हित के। मैं आपकी सेवा तो करूं लेकिन बदले में कुछ ना मांगू, ये शुद्ध भक्ति है। अगर मैंने भक्ति की, कोई घंटी बजा दी तो बदले में कुछ ले लिया, मांग लिया भगवान से, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, आसान भी है पर इतना आसान भी नहीं। कलयुग में सुगम है भगवान को पाना, लेकिन अब कलयुग के पतित लोग भगवान को नहीं पाना चाहते, क्योंकि मेरा मन बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, ये विषय वासनाओं का त्याग नहीं करता। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना कि अमार जीवन सदा पापे रह, शुद्ध भक्त बेचारे कितने विनम्र हैं, मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है, ना ही का पुण्य रा लेश, कोई पुण्य इसमें नहीं, हमारा जीवन सदा पापेरत ना ही को पुण्य रा लेश, परेरा उद्वेगा दी आची ये कर तो दी आची जीवेरा कलेश, बस मेरा काम दूसरों को कष्ट देना ही है। तो अगर मैं दूसरों की आत्मा को सताता हूं, किसी के चिंटी की भी आत्मा को मैं सताता हूं, तो मैं भगवान के निकट नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं प्रभुपाद कृपा से याद रखो, अंतिम समय का चिंतन, भगवान ने दर्शन करने के लिए कहा है, स्त्री पुरुष सब मृत्यु का दर्शन करो। इस श्लोक को याद कर लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, 13वां अध्याय 9वां श्लोक है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मृत्यु मृत्यु आ रही है, जब ये पापी मन काम की तरफ जाए ना, मृत्यु बस मृत्यु, भाई मैंने मरना है, ये क्या काम वासना है, ये तो नरक है, ये बंधन है, ये आवागमन है। हां इसका मतलब फिर काम वासना को बिल्कुल कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, धर्म वृद्ध भूतेशु कामस्मी भरतर शवा, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। आज सब धर्म के विरुद्ध काम का पालन कर रहे हैं, इंद्रियों का तर्पण कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध ऐसा कर रहा है उसको तो नरक में जाना पड़ेगा। हां जो धर्म के अनुसार है। अरे भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, क्या कितने बच्चे थे उनके पता है, कौन जानता है, 13 बच्चे थे। तो क्या वो काम वासना की तृप्ति में लगे हुए थे। अरे एक बच्चा ऐसा पैदा किया उन्होंने, निष्ठ के ब्रह्मचारी, ये है जिन्होंने कभी स्त्री का मुंह ही नहीं देखा, और जिनको लाइन गुरु सिंह गुरु कहा जाता था, और उन्होंने हमारे गुरु महाराज को कहा, एक महात्मा ने दूसरे महात्मा को पहचाना, तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। और गुरु महाराज ने पूरे जीवन भर उसकी तैयारी की, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है सारे जीवन ने, 1922 में कहा, और गुरु महाराज 1965 में गए अमेरिका, और जाकर के ये भगीरथी कार्य किया, असंभव को संभव किया। ये संभव नहीं था, जिनके रगों में, एक बार मैंने प्रभुपाद को ये कहा, उनकी कृपा से कहा, मैं प्रभुपाद हाँ क्या है, मैंने कहा आपकी दया का कोई अंत है, क्या बात, मैंने कहा गौ नेता ने तो एक जगाई बधाई का उद्धार किया था दो भाइयों का, आपने कितने जगाई बधाइयों का उद्धार कर दिया एक लेक्चर में ही प्रभुपाद कह रहे हैं। चुप रहे। गौ मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, पर स्त्री संग करना, पर पुरुष संग करना, जुगा खेलना, ये यही तो जगाई बधाई करते थे और क्या करते थे। तो इन्होंने कितने जगाई, ये एक भक्त की महानता है, भक्ति की शक्ति है। तो ये असंभव कार्य संभव प्रभुपाद ने किया। अगर इनकी कृपा से हम भक्त बनते हैं तो ये कहीं हमें निमित्त बना देंगे संभव को संभव करने के लिए। आज भारत की बड़ी दुर्गति हो रही है, बड़ी दुर्गति हो रही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। संजय जी मेरे साथ थे, संजय है नहीं अभी, गया होगा नीचे। उन्होंने मुझे बताया यहां दिल्ली की एक घटना है, यहां कॉल सेंटर है गुड़गांव की तरफ दिल्ली एरिया में, एक पता नहीं भाई बहन या कौन थे, एक लड़का एक लड़की को 12 बजे वो कॉल सेंटर से आए, गुंडे बदमाश नहीं है दिल्ली में, कोई सुरक्षा है किसी की? अरे कहीं सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वासना इतनी बढ़ गई है। गुंडे आए, गाड़ी रोकी और उस बेटी को, उस बेचारी को, उसकी बहन जो भी थी, जबरदस्ती ले गई उठाकर उसको। ये कोई चीना है, क्या हो रहा है? ये महापाप हो रहा है। और ये राजधानी, हमें भी अभी कुछ दिनों की बात है, मगर 3-4 दिन की बात होगी, हम अमृतसर से आ रहे थे उधमपुर, रास्ते में गुंडों ने घेर ली मारी गाड़ी, संजय गाड़ी चला रहा था और गुंडे बस गाड़ी स्कूटर का 20 किलोमीटर संजय लेके आया, दो गाड़ी में मार रहे थे। तो 20 किलोमीटर के बाद संजय ने फोन किया, मैं ऐसा है गाड़ी तुम आगे लगाओ कहीं आओ, हमने गाड़ी लगा दी तुम आओ। आए गुंडे, 2 थे 6 हो गए, वो लूटना था लेकिन गुरु महाराज ने बचाया, इन्होंने रक्षा की। उन्होंने लूटना था जो भी होता ले जाते सब कुछ, ये हालत हो गई है। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, ये मत सोचो हमारे साथ होगा, आपके साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ भी। हम लोग इतने मंद बुद्धि हो गए हैं ना, इसके साथ होगा मेरे साथ थोड़ा होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हाईवे लूटर आजकल कितना हो गया काम, ये क्या है? ये सब काम विकार की उपज है और लोग भूल गए हैं कि मैंने मरना है। चाहे गुंडों को फिर हमें वो ऐसा होगा कि वो गुंडे जो हैं वो पीछे हो गए, 6 बड़े बड़े मुस्टंडे तगड़े, कहां सुजानपुर। तो अभी मैंने संजय बोला तुम चल आगे, हम हमारी गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, हम थोड़ा गुंडों से लड़ सकते, जा रहे हैं तो आगे। प्रभु की ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने पता नहीं टायर पंचर कर दिया, कुछ फेंका या खुद टायर पंचर हो गया, भगवान जाने गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पीछे भक्त बैठे हुए कहने लगे चलो चलो चले, कैसे चला, टायर ही पंचर हो गया। हमने गाड़ी पीछे रोक ली तो वो जगह ऐसी थी, वहां अमरनाथ यात्रियों का लंगर, जगह जगह लंगर है, आपको पता है यात्रा चल रही है आजकल, लाखों लोगों ने अमरनाथ स्वामी के दर्शन किए। हम भी श्रीनगर गए थे, रहे उधर एक बार, हफ्ता रहे कुछ, एक बार 4-5 दिन रहे। तो वहां रुके तो उन गुंडों ने देखा, तो मैंने संजय को कहा जाओ इन लोगों को बोलो हमारी मदद करे, गुंडे हमारे पीछे लगे हैं। वो लोग आने दो गुंडों को, सालों हम उनको जानते नहीं थे। गुंडों ने देखा भी ये लोग हैं, मारेंगे, फिर भाग गए। वो 3 एक मोटरसाइकिल पर चढ़े हैं, 3 एक पर चढ़े हैं, बीच में संजय जी की गाड़ी जा रही। तो आप देखो ये हालत हो गई है, जीना दुश्मार हो जाएगा। जागो, आंखें खोलो, आप शुद्ध भक्त बनोगे ना तो आप कईयों को बचाओगे। भक्ति की आवश्यकता और कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी अमेरिका में इतनी है, टेक्नोलॉजी से क्या होता है? अमेरिकन लोग जितने दुखी हैं, वहां बड़े क्राइम है लेकिन वहां पर क्राइम का कंट्रोल भी है, फिर भी क्राइम वहां नहीं बंद होते। दिन दिहाड़े कत्ल कर देंगे, रात को तो कोई न्यूयॉर्क में बाहर जा ही नहीं सकता, बुरी हालत है। तो मृत्यु का चिंतन बड़ा आवश्यक है मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं। आओ अगला श्लोक, समय थोड़ा कम है, आप सब मेरे पीछे बोलो, मैत्रिया उवाच। मैत्री मुनि ने कहा, पुरा पहले स्वयंभू मनु के काल में, विश्व सृजाम ब्रह्मांड की सृष्टि करने वालों के सत्रे यज्ञ में समेता एकत्रित हुए परम ऋषिया बड़े बड़े ऋषि तथा और भी अमर गाना देवता सर्वे सभी सा अनुगा अपने अपने अनुयायियों सहित मुनिया विचारक चिंतक अप्रया अग्निदेव मैत्रियो वाच पुरा विश्व सृजाम सत्रे समाता परम परमशया तथा मरगनः सर्वे सानुगा मुनियो ग्रया। समय का ध्यान करते हुए एक आध भक्त बोल लो और उसके बाद फिर थोड़ा इस पर विचार करते हैं। माता को बोल लो अनुवाद। अभी कृपया सब बोलो। मैत्री ने कहा पहले एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि चिंतक देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए थे। तात्पर्य हमारे परमदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने जिनके नाम मरीचि दक्ष तथा वशिष्ठ हैं संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए ब्रह्मा तथा शिव भी उपस्थित हुए। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं जैसा आपको ज्ञात ही होगा हो सकता नहीं भी हो दक्ष जी ने ये यज्ञ किया था जैसे ये वर्णन यहां आ रहा है। दक्ष को प्रजापति ही वो मतलब सृष्टि के बढ़ाने वाले थे। दक्ष का वैसे अर्थ है जो बड़ा निपुण है संतान उत्पत्ति करने में। दक्ष जी ने पहले 10,000 बच्चे उत्पन्न किए थे। क्या नाम था उनका कोई जानता है? हरियासन 10,000। उन्होंने बच्चे उत्पन्न किए, जाओ बच्चों तपस्या करो। वैसे बिना तपस्या के कोई कार्य होता नहीं, उनको दक्ष जी अच्छे गृहस्थी बनाना चाहते थे। अब ये लीलाएं क्यों घट रही हैं? हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन मूर्ख लोग हम नहीं समझते, संसार में खो गए हैं। तो ये तो नारद जी महाराज ने उन 10,000 हरियासवन उनको बोला, बच्चों कहां जा रहे हो? कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं। कहते किस लिए? कहते गृहस्थी, अच्छा गृहस्थी बनना। कहते गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है? आप भजन करो भगवान का। और 10,000 के 10,000 नारी जी ने भक्त बना दिए। बोलो देव ऋषि नारी जी महाराज की। फिर 1,000 उत्पन्न किए, उन्होंने उनको भी भेजा, उनको भी नारी जी ने भक्त बना दिया। अभी नारी जी को ये थोड़ा को उन्होंने कोई कुटकेती थोड़ी की, आके बताया भाई तेरे बेटों को मैंने ये शिक्षा दी। तो अभी देखो जो गृहस्थी है ना, जो विषय कीट है, वो संतों को नहीं पहचान सकता। और आपको पता है कि दक्ष प्रजापति ने बड़े उल्टे सीधे शब्द कहे नारी जी को, और नारी जी एक शुद्ध भक्त है भगवान के, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे बेचारे। और कि भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, भक्त को बड़ा सहनशील होना चाहिए। तू ये है तो वो है, मैं वो शब्द नहीं लाऊंगा अपनी जबान पर, क्योंकि नारी जी बड़े महान हमारे पूजनीय हैं। श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो एक जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेगा। वो भी नारी जी ने स्वीकार कर लिया। अभी देखो, अभी दक्ष ने जब एक भक्त को नहीं पहचाना, अगर दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए, अगर नारी जी ने उनको भक्त बना के त्यागी बना दिए, तो इसमें क्या बुराई की इन्होंने? तो दक्ष को स्वीकार करना चाहिए था, ठीक है महाराज जैसे, क्योंकि जो विषय है ना, जब प्रजापति है दक्ष जी, उसकी बुद्धि थोड़ी मलिन हो जाती है। प्रभुपाद ने भागवत में ही लिखा है, अगर कोई हो सके तो ब्रह्मचर्य से संन्यास ले ले। बस कलयुग में तो बड़ा कठिन है, क्योंकि विषय वासना इतनी प्रबल है, हैं? लेकिन महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, और प्रभुपाद जी ने भी संन्यास लिया, घर बार छोड़ा। पर कलयुग में संन्यास लेना मना है, क्योंकि अगर संन्यास का पतन हो जाता है तो फिर ऐसे है कि जैसे अपना उल्टी की हुई उसको वापस खाना। लेकिन अगर किसी पर ऐसे संतों की कृपा होती है, और संतों की कृपा से परंपरा छठ गोस्वामियों की कृपा होती है, और छठ गोस्वामियों की कृपा से गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की कृपा होती है, तो उसकी रक्षा ये करेंगे, स्वयं करेंगे, फिर आदमी इस पाप कर्म से बच सकता है, जिसे भगवान ने कहा कि विधि एनम ही बैरी नाम। इस संसार का जो सर्वभक्षी पापी शत्रु जो है वो काम है। तो दक्ष की बुद्धि, श्राप नहीं देना चाहिए था दक्ष को, एक भक्त को श्राप दे दिया, भक्त ने स्वीकार भी कर लिया, नारद जी ने कुछ नहीं कहा। नारद जी तो वापस दे सकते थे श्राप, नारद जी कोई, नारी जी ने वो जो 2 पुत्र थे कुबेर के, यमुलाब्जन, श्राप दिया था ना उनको, तुम्हें तुम देवता शरीर में रहने योग्य हो, जाओ वृक्ष बनो, नंगे यहां पर सरोवर में नहा रहे हो तुम, अप्सराओं ने तन ढक लिए, लेकिन वो जो अर्जुन वृक्ष थे उन्होंने अपना, और जो यमुलाब्जन जो थे तन नहीं ढके, मदिरा पान कर रखा था उन्होंने। तो दक्ष की बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो गए। अभी यज्ञ जब दक्ष जी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े महान महानुभाव वहां आए हुए हैं, शंकर भगवान भी वहां पर हैं। तो जब सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं, देवता बैठे हैं, तो दक्ष जी आए, सब खड़े हो गए, क्योंकि प्रजापति हैं वो, प्रोजनी को बढ़ाने वाले हैं। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। अरे शंकर भगवान को खड़े होने की क्या जरूरत है, वो महादेव हैं। अगर दक्ष की लड़की से उन्होंने शादी की तो फिर क्या हो गया, दक्ष बड़ा हो गया, महादेव का पद बहुत ऊंचा है। इसलिए कहा कि देवों में देव महादेव। बोलो महादेव भगवान की। शंकर भगवान बड़े पूजनीय है, बड़े महान है, जन्म शंकर भगवान का तो हुआ तमोगुण से, ब्रह्मा जी से, लेकिन उनका पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा प्रभुपद बता रहे हैं हो गया। कारण उनकी महानता, वो केवल भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जब नहीं देखो, जो आदमी कामुक होता है ना, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो शरीर के स्तर पर आ जाता है, अपने आप को शरीर समझता है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है? मैं ये शरीर नहीं हूं। देहात्मक बुद्धि कुन पे त्रिधातु के हैं साहेबा ही गोखरा। प्रभुपाद श्लोक को बार बार कोट करते थे, जो अपने आप को इस कफ पित्त वात से बना हुआ शरीर समझता है वो गाय है या गधा है, पशु है, वो गोखरा। बार बार आज हम गधे हैं, गाय बने हुए हैं, पशु बने हुए हैं। पशु अपने आप को शरीर समझता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए, भक्ति करके उसको शरीर के स्तर से ऊपर उठना चाहिए, जो कि हम नहीं उठ पाते। क्योंकि भक्ति नहीं की मैंने अच्छी तरह से, मेरा मन तो फंसा रहा संसार में ही, धन में, अनुयायियों में, स्त्री में, हैं बड़ा प्रवक्ता बनने में, तो कैसे भक्ति का? भक्ति तो बड़ी दूर की चीज है। तो दक्ष की बुद्धि मलिन थी, जब शंकर भगवान नहीं उठे तो तब वो जो दक्ष ने जो है उनका अपमान किया था, उनका अपमान किया था। तो फिर जब दक्ष ने द्वारा यज्ञ किया था तो तब शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया था, तब राम जी की परीक्षा ली थी सती जी ने, तो शंकर भगवान ने उनका त्याग कर दिया, मैं यज्ञ में जाऊंगी, लंबी बात है वो। तो शंकर भगवान ने मना किया कि नहीं, मेरे पिता का घर है। तो सती का भी सम्मान दक्ष ने नहीं किया था, तो सती माता है, उनका नाम ही सती है, बोलो सती माता की गई। तो उन्हें देखा तो सब देवी देवताओं का भाग है यज्ञ में, शंकर भगवान का नहीं है। तो माता से ये सहन नहीं हुआ, माता ने कहा ये मेरा शरीर तेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं इसका त्याग करती हूं। छोड़ दिया वो शरीर माता ने, हाहाकार मच गया वहां पर। तो दो गण शिव जी ने अपने भेजे हुए थे, उन्होंने दक्ष का गला काट दिया। दक्ष को अपने कर्म का फल मिल गया है ना। शंकर भगवान को भागवत कहा कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान है। तो दक्ष का गला कट गया, अपने कर्म का उसको दंड मिला। फिर विष्णु भगवान आए, लाया गया उनको, अपना शंकर भगवान को मनाया गया। बड़ी मुश्किल से अभी दक्ष का गला तो हवन की उस कुंड में डाल दिया था, सर तो जल गया था, अभी प्राण वापस लाने बकरे का गला लगा। फिर दक्ष जी का बकरे तो साधुओं का अपमान करने से, विषय लंपट बनने से बकरे का गला लगाएगा, बकरा कौन होता है? ये भी प्रभु की लीला थी। बकरे की बोली पता क्या है? मैं करता है ना, मैं बेचारा पशु भी मैं करता है, उसके गले में भी छुरी चलती है। अगर मनुष्य मैं करेगा तो उसकी क्या गति होगी? दुर्गति। अगर मनुष्य मैं करता है तो उसकी तो दुर्गति है, सदगति हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी है वो। अगर वो आदमी देखता है ये चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो वही कथा विदुर जी को मैत्री मुनि सुना रहे हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, गुरु कृपा से कहने को तो कुछ और भी है, लेकिन ये अभी हमारे जन्मदिन पर किसी ने ये उपहार दिया हमको, तो आओ थोड़ा सा इस पर कीर्तन हम करें और उसके बाद मैं समय पर समाप्ति करूंगा। एक आध किसी का प्रश्न होगा उसका भी उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और आपने कलियुग का जो धर्म है, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, बोलो धर्म कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण शक्ति नहीं देंगे तो हम नाम प्रचार में निमित्त नहीं बन सकते।
Oh,
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को तो होगा नहीं मेरे ख्याल में, अगर है तो बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, माइक ले लीजिए हमारे से। किसी को है प्रश्न? हाँ उधर है। हाँ वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ गया? कृपया सब शांति से बैठिए, ये हमने कोई चर्चा नहीं की अभी, ये सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट पे प्रश्न होना चाहिए। नहीं ये सब्जेक्ट ही नहीं है, अब आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं बाद अलग में, जो प्रश्न वो करना चाहिए जो चर्चा हो। ठीक है, ये थोड़ा कीर्तन में ज्यादा मस्त हो गए थे ना। और कोई प्रश्न किसी को? हमारे गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं टू आस्क ए क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रश्न करना भी एक बुद्धिमता का चिन्ह है। आप सारे बुद्धिमान हो लेकिन प्रश्न कोई नहीं कर रहा। हाँ एक प्रश्न कर रहा है बुद्धिमान व्यक्ति, कौन सा गोपाल है? सुंदर राम सुंदर, राम सुंदर राम भद्र, बोलिए राम भद्र जी। शांति से सब बैठे रहिए।
हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा कीर्तन सुनाया और भजन भी बहुत अच्छा सुनाया।
राम भद्र जी आपका धन्यवाद।
तुम्हारा जो प्रश्न था कि शिव जी जो मतलब बैठे थे सभा में तो उठे क्यों नहीं, उनको पता था कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा, और जब उठे मतलब गुस्से भी जब हो गए, दक्ष पर गुस्से भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब कुछ बोला।
आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बंद हो गई। थोड़ा नजदीक आके कहो, पास में आओ। हाँ जी हाँ अरे शंकर भगवान तो महादेव है, वो सबके स्वामी है। प्रभुपाद एक जगह कह रहे हैं भागवत में लॉर्ड शिव इज आइडेंटिकल विद लॉर्ड कृष्णा। अरे उनको क्या जरूरत है उनके स्वागत करने की? ससुरे तो फिर क्या हो गया, उनकी पोजीशन तो ऊंची है ना, क्यों उठना चाहिए? आप होते तो उनको बोलते हो, हम नहीं कहेंगे उनको उठेंगे, क्यों उठना है उनको? शंकर भगवान एटिकेट होते हैं ना, अरे वो महादेव हैं, देवताओं के सरताज हैं, वो क्यों उठेंगे? और ये लीला है ना कि दक्ष कोई शिक्षक, दक्ष जो है इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, दक्ष में अहंकार क्यों होंगे इतना? शंकर भगवान नहीं उठे तो उनकी वो महत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करता दक्ष? क्योंकि वो दक्ष है, संतान उत्पत्ति करने में बड़ा वो निपुण है, तो उसको नहीं बुद्धि नहीं काम कर रही है इसकी, नहीं उठे तो फिर क्या है? उनका हिस्सा रखना बंद कर दिया। तो ये शिक्षा है मानव समाज को कि जो विषय वासना में लगा रहेगा, चाहे दक्ष है चाहे कोई है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। इंद्र की बुद्धि मलिन नहीं होती देवताओं के राजा की, उसने गौतम ऋषि पत्नी जो अहल्या थी, उसने गौतम ऋषि का शरीर बनाकर उसका संग किया था, तो श्राप दे दिया था ना उसको भी गौतम ऋषि ने, बड़ा बुरा श्राप था, भागवत में तो कहता है, समझाइए आपको। राम भद्र है, सुंदर नहीं यहां पर, राम भद्र सुंदर भी बहुत है यहाँ, कितने सुंदर है यहां पर है, और एक सुंदर वो खड़ा है, अरे सुंदर मधु सुंदर सुंदर गोपाल, तुम आप सब सुंदर हो, सुंदर मायापुर सुंदर, सुंदर ही सुंदर, बस सुंदर माधव, समझाइए आपको राम भद्र जी। धन्यवाद है आपका। और कोई प्रश्न किसी को? माताओं में से किसी को? ठीक है, मेरे पीछे बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ललिता विशाखा राधा पार्षदी भगवान की, बोलो जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नितय गौर सुंदर भगवान की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो दिल्ली के वैष्णवों की। हरे कृष्ण।